ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा ने बहुत सुंदर टाइटल दिया है बच्चों को। बाबा कहे, तुम सब शीतला देवियां हो। देवियां भी शीतला देवी, शीतल देवी और भाई फिर शीतल देव। तुम्हारा अंग अंग शीतल होना चाहिए, तभी तुम देवता बन सकेंगे। तो देवताओं के लिए तो ये गायन है, कमल नयन, कमल मुख, कमल हृदय। तो कमल क्यों? क्योंकि उनका अंग अंग शीतल है। लेकिन कैसे बना उनका अंग अंग शीतल? क्योंकि इस समय दुनिया में तो सबके अंग तपे हुए, विकारी है सारे, सब अंग विकारी है। तमो प्रधान है तो जैसे तपे हुए। पर तुम बच्चों को अपने अंग अंग शीतल बनाने हैं, तब तुम देवता बनोगे। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए बाबा से योग लगाना होगा। क्योंकि देही अभिमानी बनेंगे तो हमारी धीरे धीरे इंद्रियां शीतल होती जाएगी और हम सच्चे योगी कहलाएंगे, है ना। योगी के लिए क्या कहते हैं? योगी वो जिसका अंग अंग शीतल हो। तो इसीलिए पहले अंग अंग शीतल बने, उसके लिए योगी बने, तब ही देवता बन सकेंगे। परंतु कैसे अंग अंग शीतल होगा? जब बाबा से योग होगा। अगर बाबा से योग नहीं है तो अंग अंग भी शीतल कैसे बनेगा? तब बाबा कहते हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज होगी। बैटरी आत्मा रूपी बैटरी में घृत बढ़ता जाएगा, पड़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो दीवा आपका इतना तेज जलेगा, आत्मा रूपी दिया। अभी सबका आत्मा रूपी दिया उझाया हुआ है, माना जरा सी लीक बची है, बैटरी की चार्ज लगभग खत्म हो जाती है, हो गई है। और एकदम खत्म नहीं होती है, एकदम खत्म हो जाए तो आत्मा शरीर में रहे ही नहीं। परंतु आत्मा शरीर में है, माना कुछ तो शक्ति है, पर वो शक्ति है बहुत थोड़ी, बहुत कम बैटरी चार्ज है। लेकिन बाबा आए हैं पहले बैटरी चार्ज कराने करने, और क्या कहते उसके लिए? मुझे याद करो, पावर हाउस है ना बाबा। तो तभी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, तभी अंग अंग शीतल होगा, तभी फिर देवता बनेंगे। तो ये प्रोसीजर बाबा ने बताया है आज। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 18/12/2024 है। मीठे बच्चे, सर्वशक्तिवान बाप से बुद्धि योग लगाने से शक्ति मिलेगी। याद से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। आत्मा पवित्र सतो प्रधान बन जाती है। कब बनती है आत्मा सतो प्रधान? जब आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। और वो चार्ज कैसे होती है? जब बुद्धि योग बाप से लगता है तब शक्ति मिलती है। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो जिसकी प्रारब्ध में देवता पद मिलता है? क्या पुरुषार्थ करते हो जिससे देवता पद मिलता है? उत्तर है, संगम पर हम शीतल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शीतल अर्थात किसको कहेंगे? शीतल, शीतल अर्थात पवित्र। योगी के अंग अंग शीतल तो पवित्र। शीतल अर्थात पवित्र बनने से हम देवता बन जाते हैं। जब तक शीतल नहीं बने हैं तब तक देवता भी बन नहीं सकते। अगर क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं या ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे हैं तो देवता कैसे बनेंगे? अंग अंग शीतल चाहिए, तो जब तक शीतल न बने तब तक देवता भी बन नहीं सकते। संगम पर तुम शीतल देवियां बन, सब पर ज्ञान के ठंडे छींटे डाल, सबको शीतल करते हो, है ना। शीतला देवी वो चेचक के दाग बनते हैं ना, तो वो कहेंगे भाई देवी आई, तो फिर क्या करते हैं, ठंडा पानी डालते हैं, तो भाई ये छींटे लगाते हैं, तो वो शीतला देवी बन जाते हैं और वो सारा जो दाग है वो भी खत्म हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, संगम पर शीतल देवियां बन, सब पर ज्ञान के ठंडे छींटे डाल, सबको शीतल करना है, सबकी तपत बुझानी है। अब पहले अपनी तपत बुझे ना, तब दूसरों की भी तपत बुझा सकते हैं। सबकी तपत बुझानी है, खुद भी शीतल बनना है और सबको भी बनाना है। अब कोई गुस्सा कर रहा है, हम भी गुस्सा करते हैं तो ताली बजी, फिर तो आवाज ही होगा। अब वो गुस्सा करे पर हम शीतल रहे, हम ठंडे रहे, हम धीरे से बोले, हम प्यार से बोले, तो धीरे धीरे वो भी शांत हो जाएगा ना। तो खुद भी शीतल बनना है और सबको भी शीतल बनाना है। ओम शांति। तो बच्चों को पहले पहले एक ही बात समझने की है, सबसे पहले एक ही बात समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं और शिव बाबा सभी का बाप है। उन्हें सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्व शक्तियां थी, तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। सारे विश्व पर राज्य करने के लिए तो वह शक्ति चाहिए ना, तो तुम्हारे में वो शक्तियां थी। तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे, भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम ही पवित्र देवी देवता थे, तुम्हारे कुल व डायनेस्टी में सभी निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? कौन निर्विकारी थे? जब कहते निर्विकारी थे का मतलब क्या है? आत्माएं निर्विकारी थी, तो आत्माएं निर्विकारी तो ऑटोमेटिकली शरीर भी पवित्र है। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। अभी फिर से तुम निर्विकारी बन रहे हो। सर्वशक्तिवान बाप की याद से शक्ति ले रहे हो। बाप ने समझाया है कि आत्मा ही 84 का पाठ बजाती है। आत्मा भी ही सतो प्रधान की ताकत थी। सतो प्रधान की ताकत आत्मा में थी, वो फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। ऐसे हो ही नहीं सकता कि सतो प्रधान से तमो प्रधान ना बने, तो इसलिए तमो प्रधान बनना ही है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है। अब गाड़ी रुक गई, क्यों? क्योंकि बैटरी को चार्ज किया ही नहीं, तो इसलिए मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती है, कुछ न कुछ ताकत रहती है। जैसे ताकत रहती है तो क्या मिसाल बाबा ने दिया, जैसे कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, फिर उसमें घृत डालते ही रहते हैं, ध्यान रखते हैं दीवे पर कि उसका घृत खत्म न हो, तो अगर खत्म भी हो गया तो कम हो गया तो फिर घृत डालते रहते हैं, पर दीवा बुझना नहीं चाहिए, यही समझते हैं। तो जैसे कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, उसमें घृत डालते ही रहते हैं कि कहां ज्योत बुझ न जाए। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारी आत्मा में पूरी शक्ति थी, पूरा घृत था भरा हुआ एकदम, पूरी शक्ति थी, अभी नहीं है। अभी फिर तुम सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो, अपने में शक्ति भरते हो। क्यों शक्ति भरनी जरूरी है? क्योंकि शक्ति कम हो गई है, तो कम होती जाएगी, भरेंगे नहीं तो फिर तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी पूरी, क्योंकि शक्ति कम हो गई है। शक्ति एकदम खत्म हो जाए तो शरीर ही न रहे। आत्मा बाप को याद करते करते एकदम प्योर हो जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज रहती है। हाँ, फुल चार्ज है बैटरी तो कितना अच्छा लगता है ना, मेरा मोबाइल फुल चार्ज है तो डर नहीं है कि डिस्चार्ज न हो जाए, डिस्चार्ज न हो जाए। तो सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज रहती है, फिर धीरे धीरे कला अर्थात बैटरी कम होती जाती है। हाँ, फुल चार्ज है तो वो लकीरें दिखाते ना बैटरी की, तो वो फुल चार्ज है। फिर जैसे यूज हुई तो एक वो लकीर कम हुई, फिर दूसरी लकीर कम हुई, तो ऐसे धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है। तो धीरे धीरे कला अर्थात बैटरी कम होती जाती है। कलयुग अंत तक आत्मा की ताकत एकदम थोड़ी रह जाती है। हाँ, कई बार होता है ना मोबाइल में केवल 5% ही है तो वो लाल लाइट आती है, चार्ज करो, डिस्चार्ज हो रही है आपकी बैटरी। तो फिर धीरे धीरे कला अर्थात बैटरी कम होती जाती है। कलयुग अंत तक आत्मा की ताकत एकदम थोड़ी रह जाती है। जैसे ताकत का दिवाला निकल जाता है, आत्मा की ताकत का दिवाला निकल जाता है। बाप को याद करने से आत्मा फिर से भरपूर हो जाती है। तो अभी बाप समझाते हैं, एक को ही याद करना है, ऊंचते ऊंच है भगवान, बाकी सब है रचना। रचना को रचना से हद का वर्षा मिलता है। हाँ, रचना को रचना से हद का वर्षा मिलता है ना। लौकिक पिता भी तो परमात्मा की रचना है ना, तो उनसे तो केवल हद का वर्षा मिलता है। क्रिएटर तो एक ही बेहद का बाप है, बाकी सब है हद के। बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए दिल अंदर, कि बाबा हमारे लिए स्वर्ग नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। आता है दिल में, बाबा हमारे लिए स्वर्ग नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है, जिसमें तुम बच्चे ही आकर राज्य करते हो। तो नशा चढ़ता कि हमारे लिए ही भगवान सत्यु की स्थापना कर रहे हैं, हमारे लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं, फिर वह हम ही आकर के राज्य करेंगे। मैं तो एवर प्योर हूँ, पवित्र हूँ, मैं कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, न देवी देवताओं की तरह जन्म लेता हूँ। भले योग बल की संतान है तो भी तो जन्म तो लेते ना देवी देवताएं, तो मैं उनकी तरह भी नहीं मैं जन्म लेता हूँ। फिर सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए जब ये बाबा ब्रह्मा बाबा 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है, तब इनके तन में मैं प्रवेश करता हूँ, मैं परकाया प्रवेश करता हूँ, मैं प्रकृति को अधीन करके आता हूँ। यही फिर नंबर 1 तमो प्रधान से नंबर 1 सतो प्रधान बनता है। तो ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन वासी। ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर कहाँ से आए? आत्माएं तो है, सालिग्राम उनकी याद है, यादगार ले शिव और सालिग्राम है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? ये सिर्फ साक्षात्कार होता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार होता है, इनका हड्डी मांस का शरीर नहीं है। ये फिर साक्षात्कार होता है सूक्ष्म वतन के, है ना, जहाँ स्थूल शरीर है नहीं। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से ही देखा जाता है। ब्रह्मा तो है सफेद वस्त्रधारी, वो शरीर वो कैसे दिखता है, ब्रह्मा का शरीर सफेद वस्त्रधारी, साक्षात्कार में भी सफेद वस्त्रधारी दिखता है। फिर विष्णु का कैसे होता है साक्षात्कार, फिर विष्णु है हीरे जवाहरातों से सजा सजाया, उनका साक्षात्कार फिर उस रूप में होता है, सजा सजाया स्वरूप। फिर शंकर का कैसे साक्षात्कार होता है, फिर शंकर के गले में तो नाग आदि दिखाते हैं, फिर चोटी में चंद्रमा और एकदम कैसा उनका शरीर दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब तीन अर्थ है ना, तो फिर शंकर के गले में नाग आदि दिखाते हैं, ऐसे शंकर आदि कोई हो नहीं सकता, माना ये साकारी रूप नहीं है, ये आकारी रूप है, इसलिए ऐसे कोई साकार में इस प्रकार होगा नहीं। अभी फिर सूक्ष्म वतन में तो ऐसे शंकर आदि कोई हो नहीं सकता, दिखाते हैं अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अभी फिर सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य सृष्टि है नहीं जहां उनको अमर कथा सुनाई, या सूक्ष्म वतन की बात हो जो अमर कथा सुनाई, तो कथा वो वहां कैसे सुनाएंगे। बाकी सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार ही होता है, जो बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं उनका साक्षात्कार होता है। यहाँ फिर सतयुग में जाकर यही जो फिर जिनका साक्षात्कार होता है, यही फिर सतयुग में जाकर स्वर्ग के मालिक बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, फिर साकारी शरीर धारण करके लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो यही फिर सतयुग में जाकर स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो बुद्धि में आना चाहिए, अब क्या आना चाहिए, ये सब राज बाबा ने बताए, फिर बुद्धि में आना चाहिए कि इन्होंने ये राज्य भाग्य कैसे पाया, लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य भाग्य कैसे पाया। लड़ाई आदि तो कुछ होती नहीं है, देवताएं हिंसा कैसे करेंगे, कहते ही उनको अहिंसा परमो धर्म, तो अहिंसा तो इनका परमो धर्म था, तो हिंसा कैसे करेंगे। अभी तुम बाप को याद कर राजाई लेते हो, कोई माने वा न माने, अब उनको समझ में आए या न समझ में आए कि हम योग बल से विश्व की राजाई लेते हैं, तो माने न माने पर तुमको निश्चय है कि तुम लेते हो। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल माम एकम याद करो, कितना बड़ा ये इसका श्लोक है। तो देह है देह के सब धर्मों को भूल माम एकम याद करो, बाप को तो देह है ही नहीं जिसमें ममत्व हो, अपनी देह नहीं है, इसीलिए बाबा सहज कह सकते हैं देह है देह के सब धर्मों को भूलो। अब जिनको अपनी देह है वो अपनी देह को ही नहीं भूला है, तो वो कैसे कहेगा कि देह है देह के सब धर्मों को भूलो। तो जिनको देह है ही नहीं वो कह सकता है, वो तो शिव बाबा ही है। तो बाबा कहते हैं बाप को तो देह ही नहीं है जिसमें ममत्व हो, तो बाप कहते हैं थोड़े समय के लिए इस शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूँ। भगवान को भी नॉलेज देने लिए शरीर का लोन लेना पड़ता है। मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूँ, इस झाड़ की नॉलेज मेरे ही पास है, और किसके पास है ही नहीं। झाड़ की नॉलेज तो बीज के पास ही होगी ना, तनों के पास थोड़ी होगी, तने तो बाद में आए, तो उनको शुरू से तो पता नहीं है, लेकिन जब वो आते हैं तब से फिर उनके लिए वो भाई वो समझते जाते हैं और सुनाते जाते हैं उस समय की मांग अनुसार। तो बाबा कहते हैं इस झाड़ की नॉलेज मेरे पास ही है, इस सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे उत्पत्ति पालना विनाश होता है, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है, वो तो पढ़ते हैं हद की पढ़ाई, इस दुनिया की बातें वो पढ़ते हैं, वो तो पढ़ते हैं हद की पढ़ाई, बाप तो बेहद की पढ़ाई पढ़ाकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। अब भगवान कभी देहधारी मनुष्य को नहीं कहा जाता है, कोई भी देहधारी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता है। हाँ, ये अंडरलाइन है। कोई कहे ना फलाना भगवान, ये भगवान, वो भगवान, तो कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। इनों को यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपनी सूक्ष्म देह है, इसलिए इन्हें भी भगवान नहीं कहेंगे। ये शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त है, ये ब्रह्मा बाबा के शरीर का तख्त है, जहाँ आत्मा इनकी अपनी भी विराजमान है और बाबा इनके ही तख्त पर आकर बैठते हैं। तो बाबा कहते हैं, ये शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त है, अकाल तख्त है ना। अभी ये अकाल मूरत बाप का तख्त है, अकाल मूरत बाप ने भी ये तख्त लिया है, तो ये अकाल मूरत बाप का तख्त है। अमृतसर में भी अकाल तख्त है, बड़े बड़े जो होते हैं वह अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं, वो समय निकालते हैं और वो अकाल तख्त होता है, वहां पर ग्रंथ रखा होता है और वो पढ़ते हैं, तो वो एक के बाद एक पढ़ते जाते हैं। वो जैसे पढ़ता है, दूसरा आया तो उस पर हाथ रखते हैं कि मैंने यहाँ तक पढ़ा है, और वो जैसे बैठता है तो वो देखता जाता है और पढ़ता जाता है यहाँ बैठ करके, तो एक सेकंड भी छोड़ना नहीं है, वो ग्रंथ एक सेकंड भी नहीं छोड़ना है, चलते ही रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, अभी ये अकाल मूर्त, तो बाबा कहते हैं वहां बड़े बड़े जो होते हैं अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अभी बाप समझाते हैं, ये सब आत्माओं का अकाल तख्त है, हर एक आत्मा का ये मस्तक ये ब्रकुटी अकाल तख्त है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, तब तो कहते हैं ये कर्मों का फल है। हाँ, तो बाबा कहते हैं संस्कार होते हैं, फिर उसी अनुसार फिर कर्म भी होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं आत्मा के लिए, क्या कहेंगे, बच्चा पैदा हुआ तो कहेंगे ये संस्कार लाया है पूर्व जन्म से, और जब मरता है तो क्या कहते हैं, अपने कर्म ले गया, तो वो कर्म जो आत्मा ले गई वही फिर संस्कार के रूप में नए जन्म में मिलता है। तो बाबा कहते हैं आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, तब तो कहते हैं ये कर्मों का फल है। सब आत्माओं का बाप एक ही है, बाबा कोई शास्त्र आदि पढ़कर नहीं समझाते हैं, ये बातें भी शास्त्रों आदि में है नहीं। कितनी बातें बाबा सुनाते हैं, वो कहाँ शास्त्रों में है, तो ये तो है नहीं। तब तो लोग चिढ़ते हैं, वो कहते हैं आपने किस शास्त्र से लिया, हम कहते 84 लाख योनियां मनुष्य आत्मा नहीं लेती, केवल 84 जन्म लेती, तो पूछते आपने किस शास्त्र से ये बात ली कि 84 लाख योनिया में मनुष्यात्मा नहीं जाती, तो हम कहते तो डायरेक्ट भगवान ने बताया है। तो इसलिए बाबा कहते वो चिढ़ते हैं कि आप लोग शास्त्रों को मानते ही नहीं, ऐसे कह देते क्योंकि आप उनके अनुसार नहीं सुनाते हो। तो बाबा कहते हैं ये बातें भी शास्त्र आदि में है नहीं, तब तो लोग चिढ़ते हैं, कहते ये लोग शास्त्रों को मानते ही नहीं है। साधु संत आदि गंगा में जाकर स्नान करते हैं तो क्या पावन बन गए, स्नान किया पावन बन गए, वापिस तो कोई जा नहीं सकते। अगर सचमुच पावन बन गए होते तो वापस जाते परम धाम, लेकिन वापस तो कोई जा नहीं सकते, सब पिछाड़ी में जाएंगे, अंत में जाएंगे। जैसे कैसे जाएंगे, बाबा मिसाल देते ना, जैसे मकड़ों का झुंड देखा है, मकड़ों का झुंड देखा है, कैसे वो उड़ते हैं आकाश में, मक्कड़ होते हैं, मोटे मोटे होते हैं बहुत, और वो इतना इतना उनका झुंड होता है जो सूरज को भी ढक देते, वो सूरज का प्रकाश भी उस समय कम हो जाता जब वो मक्कड़ उड़ते हैं आकाश में। देखा है, जिसने देखा है तो उठाओ, 2-3 ने देखा है, हमने तो देखा है। हम उस समय तो मुंबई में रहते थे, तो वहां बालकनी में खड़ी थी मैं, तो मैंने तो आवाज आया जोर से आवाज, मुझे लगा कोई हवाई जहाज जा रहा है जाएगा, तो मैं ऊपर आकाश में देखने लगी ये क्या क्या आवाज है आकाश में, तो इतना मकड़ों का झुंड, इतना मकड़ों का झुंड, मोटे मोटे वो मकड़ होते हैं, इतना झुंड है तो बड़े बड़े, लेकिन वो इतना ऊंचा था, दिखाई तो दे रहा था, और कहां जाकर के वो पास में कोई खेत था, वो फिर जाकर के उस खेत पर बैठ गए, और खेत पर बैठ गए और एक मिनट में सारा खेत खा गए, सब कुछ खा गए, एकदम खाली हो गया मक्कड़। तो ऐसे थे। तो बाबा कहते हैं तो कैसे जाएंगे आत्माएं परम धाम, जैसे मक्कड़ों का झुंड व मक्खियों का झुंड जाता है, उसमें भी रानी होती है, जैसे मक्खियों में भी रानी होती है ना, वो जहां मक्खियां जाएंगी वहां वो भी जाएंगी, तो मक्कड़ों की भी रानी होगी, और वो एक जाती है तो उसको सब फॉलो करते हैं, वहां जाती है और उसके पीछे पीछे सारे आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे मकड़ों का झुंड व मक्खियों का झुंड होता है, मक्खियों में भी क्वीन होती है, रानी होती है। हाँ, रानी तो वो तो मेन है, रानी तो क्वीन होती है, उनके पिछाड़ी सभी जाते हैं, बाप भी जाएंगे, अब वो तो राजा है ना, वो तो ब्राइड ग्रूम है, साजन है। तो बाबा कहते वो पिछाड़ी, तो बाबा कहते उनके बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं भी जाएंगी, वो साजन है तो साजन के पीछे सब सजनियां जाएंगी, मूल वतन में भी जैसे सभी आत्माओं का झुंड है, वो झुंड जाएगा, करोड़ों करोड़ों मनुष्य मरेंगे, जब विनाश होगा तो करोड़ों तो कैसे जाएंगे, वो झुंड के रूप में ही जाएंगे ना। और फिर बाबा कहते हैं मूल वतन में भी जैसे सभी आत्माओं का झुंड है, परंतु वो कैसे जाएंगे, हाँ जाकर के कैसे बैठेंगे, एक झाड़ के रूप में, ऐसे नहीं यहाँ वहां सब जगह नहीं, झाड़ के रूप में बैठेंगे, उल्टा झाड़। तो मूल वतन में भी जैसी आत्माओं का झुंड है, यहाँ फिर है सभी मनुष्यों का झुंड। हाँ, जब भीड़ होती है तो देखना होता है, तो भीड़ में चलते नहीं है, लेकिन भीड़ में वो चलाए जाते हैं, वो झुंड ऐसे ही भीड़ होती है, वो उनको धक्का मारते रहते हैं, धक्का मारते थे, मंदिरों में देखना होता है कैसे धक्के मारते रहते हैं, तो हमको चलना नहीं पड़ता, खुद पर हमको धक्के लगते रहते और हम आगे जाते हैं। तो बाबा कहते वो भी जैसे यहाँ है मनुष्यों का झुंड, तो ये झुंड भी एक दिन भागना है, भागेगा परम धाम। बाप आकर सभी आत्माओं को ले जाते हैं, शिव की बारात गाई हुई है ना, बच्चे कहो वा बच्चियां कहो, हाँ सजनिया हुई या बच्चियां हुई, या एक बाप है साजन है, बच्चे कहो वा बच्चियां कहो, हाँ ब्रह्मा बाबा भी तो शिव बाबा के साथ ही होगा, तो ब्रह्मा बाबा के बच्चे तो बच्चे बच्चियां हैं। बाप आकर बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं, पवित्र बनने बिगर आत्मा घर वापस जा नहीं सकती, अगर योग बल से पवित्र नहीं बनी तो सजा बल से पवित्र जरूर बनना है, इसीलिए कहा जाता है ना, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है, सजा जरूर खानी होगी तभी वापस जा सकेंगे घर। पवित्र बनने बिगर आत्मा घर वापस जा नहीं सकती, जब पवित्र बन जाएंगी तो पहले शांति धाम में जाएंगी, फिर वहां से आहिस्ते आहिस्ते आते रहते हैं, ऐसे नहीं कि वो झुंड जो परम धाम गया वो सारा झुंड एकदम सत्युग में आ जाएगा, फिर धीरे धीरे आते हैं, वहां से आहिस्ते आहिस्ते आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है, राजधानी बनना है ना, सभी इकट्ठे तो नहीं आते हैं, झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता है, पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है जो बाप स्थापन करते हैं, ब्राह्मण भी पहले पहले वही बनते हैं, क्योंकि वही ब्राह्मण बनते हैं फिर जाके देवता बनते हैं, तो ब्राह्मण भी पहले पहले वही बनते हैं जिन्हें देवता बनना है, प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना, प्रजा में भी भाई बहन हो जाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो यहाँ ढेर बनते हैं, कितने ढेर है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो भले पहले तो बहुत करते थे, अरे यहाँ मधुबन से फॉर्म जाता था हर एक सेंटर पर, हर एक सेंटर पर कि तुम्हारे कितने स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर कितने हैं, कभी कभी आने वाले कितने हैं, धारणाओं पर कितने चलते हैं, वो पूरा वो फॉर्म भेजते थे। फिर वो जवाब वो फॉर्म वापस आता था सेंटरों से, फिर यहाँ लिस्ट बनाते थे तो उस अनुसार पता चलता था कितने ब्राह्मण हैं, तो इसीलिए ब्राह्मण कितने हैं, पक्के ब्राह्मण कितने हैं, कच्चे कितने हैं, कितने रेगुलर है, कितने महीने में एक बार आते हैं, वो सब फॉर्म में होता था। तो बाबा के अभी तो भी इतना हो गया कि कहाँ तक वो फॉर्म भी भरते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो यहाँ ढेर बनते हैं, जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर मार्क्स लेते हैं। हाँ, ढेर मार्क्स कौन लेंगे, पूरे मार्क्स जो निश्चय बुद्धि होंगे। तुम्हारे में जो पक्के हैं वो वहां पहले आते हैं, अभी जो एकदम पक्के हैं वो पहले आते हैं सत्युग में, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। अब अपने को देखना है मैं आगे पहले आने वाला हूँ या पीछे आने वाला हूँ, कच्चे वाले पिछाड़ी में ही आएंगे। मूल वतन में तो सभी आत्माएं रहती है, फिर नीचे आती है तो वृद्धि होती जाती है, शरीर बिगड़ आत्मा कैसे पाट बजाएगी। ये पाटधारियों की दुनिया है, ये सृष्टि क्या है, पाटधारियों की दुनिया है जो चारों युगों में फिरती रहती है, पाटधारी आत्माएं। तो पाटधारियों की दुनिया है जो चारों युगों में फिरती रहती है। सतयुग में हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग। ये युग अभी ही बनता है, इसलिए वर्णन में नहीं आता है। दुनिया में तो चार युग ही बताते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर कलयुग, संगम युग का तो कोई वर्णन करता ही नहीं है। तो ये युग अभी बनता है, ये युग अभी बनता है जबकि बाप आते हैं। ये अभी बेहद की नॉलेज बेहद का बाप ही देते हैं। शिव बाबा को अपने शरीर का तो कोई नाम नहीं है, अब शरीर ही नहीं है तो शरीर का नाम कहाँ से आएगा। शिव बाबा को अपने शरीर का कोई नाम ही नहीं है, ये शरीर तो इस दादा का है। बाबा ने थोड़े समय के लिए ये लोन लिया है, बाप कहते हैं हमको तुमसे बात करने के लिए मुख तो चाहिए ना, अब कोई तो साधन चाहिए, कैसे मैं बात करूं, शरीर का मुख चाहिए, मुख तो चाहिए ना, मुख न हो तो बाप बच्चों से बात भी कर न सके। फिर बेहद की नॉलेज भी इस मुख से सुनाता हूं, इसलिए ब्रह्मा के मुख को क्या कहेंगे, गौमुख। गौमुख सच्चा तो यही है ना, ब्रह्मा का मुख, लेकिन क्योंकि मेल शरीर है तो फिर बाबा बहनों को आगे करते हैं कि वो गौमुख है, इसलिए इसको कहा जाता है गौमुख। पहाड़ों से पानी तो कहाँ भी निकल सकता है, यहाँ भी है गौमुख, माउंट आबू में भी गौमुख है, तो पहाड़ों से पानी तो कहाँ भी निकल सकता है, फिर यहाँ गौमुख बना दिया है, उससे पानी आता है। हाँ, उस गौमुख की क्या विशेषता, बहुत नीचे है, पहाड़ों के बीच में ही है, वहां पर 700 सीढ़ियां है, नीचे उतरते हैं। बहनों ने देखा है गौमुख, नहीं देखा है, हाँ देखो, किसने देखा है गौमुख बहनों में से, भाइयों में से तो देखा होगा, हाथ उठाओ भाई गौमुख देखने वाले, देखो भाई तो ज्यादा है, बहने उसको उनको कहते ये 700 सीढ़ियां उतरनी होगी, अरे 700 कौन उतरेगा। तो फिर इतनी चढ़नी पड़ती है, परंतु वहाँ बीच बीच में थल्ले बने हुए हैं तो वहाँ बैठ सकते हैं अगर थक जाते हैं तो, और नीचे एकदम जाते हैं तो वहाँ पर तो बहुत बड़ा आश्रम है, कहते वशिष्ठ आश्रम है, और वशिष्ठ आश्रम में फिर वहाँ ही गौमुख है, वो पहाड़ों के बीच से गाय का मुख बनाया, और वहाँ 24 घंटा पानी आता है, चाहे कितनी भी याना कितना भी सूखा पड़ा हो आबू में, लेकिन वहां से पानी आता है, आता ही रहता है, और लोग वो पानी पीते हैं, समझे गंगा जल है। तो बाबा कहते हैं फिर यहाँ गौमुख बना दिया है, उससे पानी आता है, उन्हें फिर गंगा जल समझ पीते हैं, उस पानी का फिर कितना महत्व रखते हैं। वैसे भी पहाड़ों का पानी तो बहुत ही शुद्ध होता है, और खास लोग वो पहाड़ों से जो पानी आता है उसको पीते हैं, क्योंकि वो पहाड़ों से आता जाता है, शुद्ध होता जाता है, उसकी अशुद्धि खत्म होती जाती है। तो बाबा कहते हैं उन्हें फिर गंगा जल समझ पीते हैं, उस पानी का फिर कितना महत्व रखते हैं। इस दुनिया में है सब झूठ। क्या है इस दुनिया में? सब झूठ। सच तो एक बाप ही सुनाते हैं, फिर वो झूठे मनुष्य इस बाप की नॉलेज को झूठ समझ लेते हैं। अब बाबा कहते हैं वो सब झूठ है, भगवान जो सत्य है वो सत्य ज्ञान देते हैं, सच्चा ज्ञान देते हैं, और मनुष्य क्या समझते हैं? हाँ, जो यहाँ ये सुनाते वो है झूठ और वो सच है। तो झूठ को सच बना दिया, सच को झूठ समझते हैं। तो बाबा कहते हैं सच तो एक बाप ही सुनाते हैं, फिर वो झूठे मनुष्य इस बाप की नॉलेज को झूठ समझ लेते हैं। भारत में जब सतयुग था तो इसको सच खंड कहा जाता था, फिर भारत ही पुराना बनता है तो हर बात हर चीज झूठी हो जाती है। अभी तो कितना डर लगता है, पता नहीं ये सच्चा है या झूठा है, कुछ पता ही नहीं चलता। झूठ तो और ही ज्यादा चमकता है, पर है झूठ। हर चीज झूठी होती है, कितना फर्क हो जाता है। तो बाप कहते हैं तुम हमारी कितनी ग्लानी करते हो। भगवान को अच्छा तो नहीं लगता होगा हम उनकी ग्लानी करते हैं। सर्वव्यापी कहे कितनी इंसल्ट की है बाबा की। हाँ, कितनी इंसल्ट कर दी, कुत्ते बिले में, कण कण में, सब में, पत्थर ठिकर न जाने क्या। उस समय गीत भी आया, एक फिल्म आई थी बाबा का, जब ये चला होगा तो फिल्म क्या थी, कण कण में भगवान, कण कण में भगवान। तो बाबा ने किसको कहा था ये देख कर आओ, कण कण में भगवान फिल्म का नाम है, तो ये कण कण में कैसे भगवान। उसमें गीत है, कंकड़ कंकड़ से पूछा शंकर मेरे कहाँ है, कहाँ मैं ढूंढू शंकर को, क्योंकि शिव शंकर एक कर दिया। तो देखो फिर बाबा ने उस पर भी समझाया था। तो सर्वव्यापी कहकर कितनी इंसल्ट कर दी। शिव बाबा को बुलाते ही हैं कि इस पुरानी दुनिया से ले चलो। बाप कहते हैं मेरे सभी बच्चे काम चिता पर चढ़कर कंगाल बन गए हैं। बाप बच्चों को कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना। सब स्मृति आती है, याद आता है कि हम सब स्वर्ग के मालिक थे। तो बच्चों को ही समझाते हैं, सारी दुनिया को तो नहीं समझाएंगे ना। हाँ, बच्चे ही बाप को समझते हैं, इसलिए बच्चों को ही समझाते हैं, फिर बच्चों का काम है औरों को समझाना। तो बच्चे ही बाप को समझते हैं, दुनिया इस बात को क्या जाने। सबसे बड़ा, अभी नेक्स्ट पॉइंट, सबसे बड़ा कांटा है काम का, नाम ही है पति दुनिया। काम का कांटा सब लगाते रहते हैं और लगता भी रहता है काम का कांटा कांटा। तो बाबा कहते हैं नाम ही है पति दुनिया। सतयुग है 100% पवित्र दुनिया। मनुष्य ही पवित्र देवताओं के आगे जाकर नमन करते हैं। बहुत भक्त हैं जो वेजिटेरियन है। ऐसे तो भक्त होंगे, वेजिटेरियन है, शाकाहारी है, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते। कई ऐसे पक्के वैष्णव है, पक्के वैष्णव, किसी ने छू लिया ना उनके भोजन को तो वो खाएंगे नहीं, उनको शरीर को भी छू लिया जाके स्नान करेंगे, ऐसे भी पक्के वैष्णव होते हैं। लेकिन विकारी तो बनते होंगे, बच्चे तो पैदा करते हो, तो इसीलिए विकारी तो बनते होंगे। बाबा कहते हैं ऐसे तो वेजिटेरियन है, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, शादी नहीं करते हैं, बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, छोटेपन से कभी छीछी खाना आदि भी नहीं खाया है, ऐसे बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो, घर बार का सन्यास करते हैं फिर दूसरे जन्म में भी किसी गृहस्थी के पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। कि सन्यासी के संस्कार है तो वो जन्म तो लेंगे, वो माँ बाप तो गृहस्थी है, लेकिन बचपन से उन बच्चे के अंदर सन्यास के संस्कार होंगे और वो जाके बच्चा ही सन्यासी बन जाएगा। हाँ ऐसे कई बार आता है यूट्यूब में, है ना, वो छोटा बच्चा बिल्कुल ऐसे सन्यासी के संस्कार, उसमें कितना पक्का वो पक्का है अपने भोजन में हर चीज में, तो लोग हैरान होते इतना छोटा बच्चा भी ऐसे कर सकता है। तो बाबा कहते हैं फिर दूसरे जन्म में भी किसी गृहस्थी के पास जन्म ले फिर घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, परंतु क्या, हाँ चलो जंगल में तो चले गए, परंतु क्या पति से पावन बन सकते हैं? पति से पावन तो एक परमात्मा की शिव बाबा की याद से बन सकते हैं। नहीं, पति पावन बाप की श्री मत बिगर कोई पति से पावन बन नहीं सकते। भक्ति है उतरती कला का मार्ग, तो फिर पावन कैसे बनेंगे? जबकि नीचे ही उतरना है तो पावन कैसे बनेंगे? पावन बने तो घर जावे, स्वर्ग में आ जावे। सत्युगी देवी देवताएं तो कभी घर बार छोड़ते हैं क्या? सत्युग में तो कोई सन्यासी नहीं होता है जो घर बार छोड़ के जाके सन्यासी बने, तो देवताएं तो कभी घर बार नहीं छोड़ते। उन्हों का है हद का सन्यास और तुम्हारा है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया मित्र संबंधी आदि सब का सन्यास। तुम्हारे लिए अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ है और मनुष्यों की बुद्धि है उनकी टांगे नरक तरफ है। तुम्हारा सिर स्वर्ग तरफ है और नरक तरफ टांगे हैं, बाबा कहते, और उनका सिर नरक तरफ है। तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ है, मनुष्य तो नरक में ही लटके पड़े, तो जैसे उनका सिर नरक तरफ है, तुम बच्चे फिर बाप की याद में लटके पड़े हो। किसको फांसी मिलती तो जैसे लटका हुआ होता है ना, तो सिर ऊपर हो जाता है, तो तुम बाबा की याद में लटके पड़े हो और वो बाबा कहते हैं नरक में लटके पड़े। तुमको अब आता शीतला देवी, तुमको शीतल देवियां बनाने के लिए ज्ञान चिट्टा पर बिठाया जाता है। शीतल अक्षर के अगेंस्ट है तपत, तुम्हारा नाम ही है शीतला देवी। हाँ सुना माता है, बहने भाई भी तो शीतला देवी है ना, शीतल देव है, तो तुम्हारा नाम ही है शीतला देवी। अब एक तो नहीं होगी ना शीतला देवी, जरूर बहुत होंगी जिन्होंने भारत को शीतल बनाया है। इस समय सभी काम चिता पर जल रहे हैं, तुम्हारा नाम यहाँ शीतला देवियां हैं। हर एक अपने को क्या समझे, मैं शीतला देवी हूँ, मैं शीतला देव हूँ। तुम शीतल करने वाली, ठंडा छींटा डालने वाली देवियां हो। छींटा डालने जाते हैं ना, ये है ज्ञान के छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं। ज्ञान के छींटे, आत्मा पवित्र बनने से शीतल बन जाती है। इस समय सारी दुनिया काम चिता पर चढ़ काली हो पड़ी है। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को, कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। कलश में क्या धारण किया है? ज्ञान अमृत, तो इस ज्ञान अमृत की बूंद सबको देते जाते हो, खुद भी शीतल बनते हो, सबको शीतल बनाते हो। ये है शीतल, ये भी तो शीतल बने हैं ना, दोनों इकट्ठे हैं, ये भी शीतल बने हैं। कौन? हाँ शीतल बने हैं, ब्रह्मा सरस्वती भी तो शीतल बने ना, फिर वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी तो शीतल बने हैं ना, लक्ष्मी नारायण पूर्व जन्म में, ब्रह्मा सरस्वती, तो अंग अंग शीतल, दोनों इकट्ठे हैं। लक्ष्मी नारायण इकट्ठे हैं, विष्णु को इकट्ठा रूप दिखाया। घर बार छोड़ने की तो बात ही नहीं है, लेकिन गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा। अब यज्ञ जब बना तो उस समय तो सब घर बार छोड़ के आए ना, क्योंकि गौशाला बननी थी। बाबा ने माताओं को इकट्ठा किया तो वो तो भागे घर से, तो गौशाला बननी थी, तो जरूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा ना। किस लिए छोड़ा? ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए। वैसे तो क्यों छोड़ती, लेकिन बाबा ने कहा पवित्र बनना है। और घर में रहते थे तो पवित्र बनने नहीं देते थे उनके पति, तो कहा भागो यहाँ से, हमको तो पवित्र बनना है, नहीं रहना है घर में। तो उस समय की बात दूसरी थी, बाबा अभी नहीं किसी को कहेंगे घर छोड़ करके यहाँ के रहो, नहीं। बाबा कहते हैं ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए घर बार छोड़ा, जब तुम यहाँ शीतल बनेंगे तब ही तुम देवता बन सकते हो। सुना, जब तक शीतल नहीं बने, अंग अंग शीतल नहीं बना है, तब तक देवता नहीं बन सकेंगे। अभी तुम बच्चों का बुद्धि योग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए, बाप के साथ बुद्धि लटकी रहे, क्योंकि तुम सबको बाप के पास घर जाना है। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मैं पंडा बनकर आया हूँ तुमको ले चलने, ये शिव शक्ति पांडव सेना है। सारे कौन बैठे हैं? शिव शक्ति पांडव सेना। तुम हो शिव से शक्ति लेने वाली, वो है सर्वशक्तिवान। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा मरे हुए को जिंदा कर सकता है, यही उनकी शक्ति है। वे भगवान की शक्ति क्या है? कोई मर गया उसको जिंदा कर लेता है, ये उसकी शक्ति है। परंतु बाप कहते हैं लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक को अनादि पाठ मिला हुआ है। चलो अभी भगवान ने जिंदा कर दिया, फिर आखिर भी मरना तो है ही ना, ऐसे थोड़ी अमर बन जाएगा इस शरीर में, तो मरना तो है ही है। तो बाप कहते हैं लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक को अनादि पाठ मिला हुआ है, मैं भी क्रिएटर डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्टर हूँ। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ड्रामा में जो पार्ट है हाँ शिव बाबा भी उसको चेंज नहीं कर सकता है। मनुष्य समझते हैं पत्ता पत्ता भी परमात्मा के हुक्म से हिलता है, परमात्मा का हुक्म न हो तो पत्ता भी नहीं हिलेगा। अब भगवान को क्या पड़ी एक एक पत्ते को कहे हिलो हिलो, तुम नहीं हिलो। बाबा कहते हैं ये तो प्रकृति की शक्ति है, हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, अब एक एक को कहाँ थोड़ी जाएगा ऑर्डर देंगे क्या, ये तो हवा ऑर्डर देती है हिलो तो हिलते हैं, तो ये तो हवा की शक्ति है। तो हर तत्वों की तो अपनी शक्ति है ना, तो और बाबा की अपनी शक्ति है, तो वो कौन सी शक्ति है? सारी दुनिया को बदलना, ये बाबा की शक्ति है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। मनुष्य समझते हैं पत्ता पत्ता भी परमात्मा के हुक्म से हिलता है, लेकिन परमात्मा को तो खुद ही कहते हैं, परमात्मा खुद ही कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं भी ड्रामा के अधीन हूँ। शिव बाबा भी ड्रामा के अधीन है, उनको अपने टाइम पर आना है, अगर वो चाहे मैं थोड़ा जल्दी जाऊं सृष्टि पर, नहीं, उनको अपने टाइम पर ही आना है। तो परमात्मा तो खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के अधीन हूँ, इसके बंधन में बांधा हुआ हूँ, ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। हाँ, इस पर विदेशियों ने एक बड़ा सुंदर ड्रामा बनाया था, बहुत अच्छा ड्रामा बनाया था, वो चार युगों का तो बताया, वो जैसे बताते हैं तो शिव बाबा अंत में फिर कैसे वो स्वर्ग में बच्चों को भेजता है, फिर शिव बाबा चाहता है मैं भी जाऊं, तो ड्रामा बीच में आ जाता है, तुम नहीं जा सकते हो। हाँ, वो ड्रामा ने शिव बाबा को रोक दिया, तो एक भाई झंडा लगाया था, झंडा तो वो झंडा बन गया शिव बाबा का वो झंडा, तो तुम नहीं जा सकते हो। तो ड्रामा कहता है, वो गोल चक्र दिखाया तो उसको पहना हुआ था, तो ड्रामा उनको रोकता है, तो शिव बाबा चाहते ही वे भी नहीं जा सकता है सतयुग में। ऐसा ड्रामा बनाया। तो बाबा कहते हैं हाँ, बाबा कहते हैं कि मैं भी ड्रामा के अधीन हूँ, इसके बंधन में बंधा हुआ हूँ, ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। हाँ, मैं भी नहीं हिल सकता हूँ अगर ड्रामा में नहीं है तो। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारतवासियों को बिल्कुल कंगाल बना दिया है, बाप के ज्ञान से भारत फिर सिरताज बनता है। अच्छा, हाँ, बाप के ज्ञान से भारत फिर सिरताज बनता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सूर्यवंशी में पहले पहले आना है तो क्या करो। पहले पहले आने के लिए निश्चय बुद्धि बन फुल मार्क्स लेनी है, तभी सूर्यवंशी में पहले पहले आएंगे। पक्का ब्राह्मण बनना है, बेहद की नॉलेज स्मृति में रखनी है। दूसरा, ज्ञान चिता पर बैठ शीतल अर्थात पवित्र बनना है। ज्ञान और योग से काम की तपत समाप्त करनी है। बुद्धि योग सदा एक बाप की तरफ लटका रहे। वरदान, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। आप सब अपनी स्वस्थिति अच्छे से अच्छी बनाने के लिए ही ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति ही आपकी प्रॉपर्टी है। यही ब्राह्मण जीवन का मेडल है। जो ये मेडल प्राप्त कर लेते हैं वो सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में रहते, सदा निश्चिंत बेगमपुर के बादशाह बन जाते। वे सर्व इच्छाओं से मुक्त इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप होते हैं। स्लोगन, अटूट निश्चय और फलक से कहो, क्या कहो, मेरा बाबा, तो माया समीप भी नहीं आ सकती। अटूट निश्चय और फलक से कहो मेरा बाबा, तो माया समीप भी नहीं आ सकती। आज का व्यक्त इशारा, आज 18 तारीख है। कितना भी कोई आपकी संतुष्टता को हिलाने की कोशिश करे लेकिन आप हिलना नहीं। सदा संतुष्ट रहना, सदा मुखड़ा मुस्कुराता रहे, सुना, सदा संतुष्ट रहना, सदा चेहरा मुखड़ा मुस्कुराता रहे। कैसी भी हालत, कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति आए तो ऐसे ही अनुभूति हो जैसे पपेट एक कठपुतली शो देख रहे हैं। कैसी भी परिस्थिति आए, एक एक कठपुतली का नृत्य देख रहे हैं, शो देख रहे हैं। माया का व प्रकृति का ये भी एक शो है। उसे साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में अपनी शान में रहते हुए देखो। संतुष्ट मणि हूँ, संतोषी आत्मा हूँ, ये है संगम का श्रेष्ठ शान। संतुष्ट मणि हूँ, संतोषी आत्मा हूँ, शीतला देवी हूँ, ये है संगम युग का श्रेष्ठ शान। ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे।